ओम शांति। ये संस्कार परिवर्तन मौन तपस्या भट्ठी में आज के प्रातःकालीन सत्र में आदरणीय गीता दीदी जी हमारे सन्मुख है। हम सभी भाई बहने दिल के स्नेह से एक हाथ की ताली बजाकर दीदी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय गीता दीदी जी बाप दादा और दादियों के राइट हैंड बन वर्तमान समय इस बेहद यज्ञ की बेहद सेवा कर रहे हैं। दीदी जी मधुबन में ही विराजते हैं, लेकिन पूरे विश्व में बाबा का संदेश देने निमित्त यात्रा करते रहते हैं। आदरणीय दीदी जी के जीवन की दो बड़ी विशेषताएं हैं। पहली बात है तीव्र बुद्धि और प्रखर वाणी। जब आपके मुख से ज्ञान रत्नों की वर्षा होती है तो वो दिल में समा जाती है। दूसरी मुख्य बात है आपके व्यक्तित्व में ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के प्रति दृढ़ता, अनुशासन के प्रति दृढ़ता, जिसे लगता है आपका जीवन ही संदेश है। प्रैक्टिकल आपका जीवन धारणाओं से, नियम मर्यादाओं से सदा परिपूर्ण दिव्य अनुभव होता है। दीदी जी वर्तमान समय बाबा के बेहद घर में होने वाले राजयोग शिविर, सभी प्रकार के विंग्स आदि के सम्मेलन सेमिनार के कार्यक्रम, कुमारियों के लिए विशेष चलने वाला टीचर्स ट्रेनिंग की पढ़ाई का कोर्स और अन्य जितने भी कार्यक्रम चलते हैं उनमें मुख्य वक्ता के रूप में यज्ञवासियों की आगंतुक मेहमानों की पालना करते हैं और विशेष भट्ठियों द्वारा ब्राह्मण परिवार को स्व उन्नति और तीव्र पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा आपके द्वारा मिलती रहती है। तो आज हम सभी भाग्यशाली हैं, दीदी जी हमें तपस्या का ध्येय बाप समान स्थिति इस सुंदर विषय पर अपने वरदानी बोल, अपने ज्ञान रतन देंगे। इससे पहले एक छोटी सी सूचना है, जो ट्रांसलेशन सुनना चाहते हैं वो 106 फ्रीक्वेंसी अपनी कनेक्ट करेंगे, 106 नंबर पर। तेलुगु ट्रांसलेशन कौन कौन चाहते एक बार हाथ उठाएंगे, जिनको ट्रांसलेशन की जरूरत है।
ओम शांति। తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఎవరెవరికి కావాలి ఒకసారి చేతులు ఎత్తండి. ఓకే, 106 ఎఫ్ఎం లో సెట్ చేసుకుంటే తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ వస్తుంది.
ఒక దూసరా ఛోటా సా నివేదన్ హే, ఇస్ క్లాస్ కే బాద్ లగ్భగ్ 11:15 బజే బ్రేక్ హోతా హే, తో వో టీ బ్రేక్ హే, తో ఆప్ మే సే జో భాయి బహనే చాయ్ పసంద్ కరేంగే వో థోడా హాత్ ఉఠాయేంగే। दो ऑप्शन है, चाय या शरबत, तो जो चाय पीना चाहते भंडारे में बताना है, प्लीज थोड़ा सा अपना हाथ उठाएंगे चाय के लिए। अच्छा है, और बाकी जो शरबत लेना चाहते ठंडा वो ठीक। थैंक यू, थैंक यू। आदरणीय दीदी जी से अनुरोध है हम उनके वरदानी वचन सुनते हैं। गीता दीदी जी।
ओम शांति। सत गुरुवार का भोग स्वीकार किया सबने, किया पसंद आया कि नहीं आया? हाँ, तो ज्यादा तो नहीं खाया? हाँ, सभी अलर्ट बैठे हैं। बाबा के घर में क्लास करो और ग्लास पियो, है ना? क्लास और ग्लास, सुबह क्लास किया, फिर भोग खाया, फिर क्लास करेंगे, फिर अब बीच में और भी मिल रहा है, चाय शरबत भी है। हम पढ़े उसके लिए बाबा कितनी सुविधा दे रहा है, हमारा जीवन बने, हम महान बने, उसके लिए यज्ञ हमें कितनी सुविधा देता है ना? स्वयं बाबा तो हमारे लिए पुरुषार्थ करते ही है। जब से बाबा आए हैं, हम बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं, प्यार करते हैं, पालना देते हैं, कितना हमारे पीछे बाबा संगम युग में जैसे हमारे लिए ही है। मधुबन की तपोभूमि पर आप सभी तपस्वियों का स्वागत है। तपस्या का महत्व हर धर्म में है, है ना? बल रोज भक्ति करते हैं तो भी वर्ष में श्रावण मास आता है, चातुर्मास आता है, अधिक मास आता है, तो विशेष धर्म ध्यान दान पुण्य तप चलता है। मुस्लिम भाई बहने भी रमजान में कितना उपवास करते हैं, जैन भाई बहने भी पर्युषण करते हैं, क्रिश्चियन भाई बहने भी गुड फ्राइडे के आसपास 15 दिन होते हैं जो वे खास तप करते हैं। हर धर्म में तपस्या का महत्व है। फाउंडेशन तो संगम युग ही है ना? हम बच्चे ही हैं। हम नित्य पुरुषार्थ करते हैं, रोज ज्ञान योग करते हैं, फिर भी 2-4 मास में एक आध बार विशेष समय निकाल कर भट्ठी करते हैं, धारणा भट्ठी, तपस्या भट्ठी, मौन भट्ठी, है ना? अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के है। ये है स्पेशल अपने आप के पीछे विशेष पुरुषार्थ करना। क्योंकि हर आत्मा पवित्र स्थिति में, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में, अपनी शुद्ध और सत्य स्थिति में ही सुख का अनुभव करते हैं। बल देह अभिमान के कारण, विकारों के वश, इंद्रिय रसों में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सारे कर्म में आखिर तो आत्मा ग्लानी का ही अनुभव करती है। 2-4 घड़ी आनंद लेती है, पर फिर अंदर से तो दिल खाता है, ग्लानी का अनुभव होता है। फिर सोचते हैं अपने कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, है ना। भक्ति में भी देखो तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि आत्मा को सदा अपने असली शुद्ध सत्य पवित्र स्वरूप में ही सुख का अनुभव होता है। निश्चिंत निर्भय आनंद स्वरूप की स्थिति में रहते हैं तब, और हम सभी तो है ही बाबा के ज्ञानी बच्चे। भक्त भावना से भी इतना करते हैं, हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं। हमें बाबा मिले हैं, बाबा का सत्य ज्ञान मिला है, हम सभी भगवान से जुड़ चुके हैं, हमारा अपना अलग कोई जीवन नहीं है, है ना, है कि नहीं ऐसा। निमित्त मात्र हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, नौकरी धंधा कर रहे हैं, पर अंदर से तो हर आत्मा को इच्छा है कि हम भी मधुबन निवासी बन जाएं, है कि नहीं। हाँ, माताएं भी चाहती है कि पहले ही बाबा मिल जाता तो अच्छा था। क्योंकि अपनी असली ओरिजिनल स्थिति बाप समान स्थिति है। बाबा उन गुणों का सागर है, हम उन गुणों का स्वरूप है, है ना। अपना अनादि स्वरूप देखो तो भी वही है। इसलिए जैसे ही आत्मा प्रतीत बनी, भगवान को याद करना शुरू हो गया। पावन बनने का पुरुषार्थ शुरू हो गया। ये तो ड्रामा में वो समय भक्ति का है, भगवान तो आए नहीं, है ना। पर अपनी रीति से भी देखो इंसान ने कितनी साधना की। तो अगर हम आत्माओं को ये लगन है कि मुझे अपने आप को बिल्कुल सच्चा सोना बनाना है, बिल्कुल शुद्ध आत्मा बनना है, कोई भी विकार का अंश न रहे, अगर मनसा तूफान आते हैं तो भी हमें अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा नहीं लगता है ना, पसंद नहीं आता है ना, कि मन में भी विकार क्यों आवे। हम कर्म में पवित्र हैं तो मन में भी पवित्र होने चाहिए। तो किसी को भी पसंद नहीं है कि माया के मनसा तूफान भी आवे। और हम जान चुके हैं
आज भी बाबा ने कहा यही अमूल्य समय है, यही अंतिम अमूल्य जन्म है। इसी समय बाबा आए हैं, हमारी सेवा में उपस्थित है। आज बाबा ने कहा ना, सचमुच भगवान कैसे हमें पावन बनाने का सारा पुरुषार्थ करा रहे हैं। कहा ना बाबा ने, मैं साफ करता हूं, भले हम सबने अलौकिक जन्म लिया है, पवित्रता का पालन करते हैं, सभी नियम मर्यादाओं में हम चलते हैं, पर फिर भी हम संपूर्ण तो नहीं हैं। कहां मैं आत्मा कमजोर हूं, खाली हूं, अभी भी मुझे किस बात में अपने आप को ठीक करना है, ये तो हर एक अपने आप को जानता होगा ना। संपूर्ण तो नहीं हो गए ना कि हो गए, हाँ? कहीं सोचते हैं कि क्या पुरुषार्थ करें, बाबा पुरुषार्थ पुरुषार्थ करते रहते हैं, पर क्या पुरुषार्थ करें? इसका मतलब उसको अपना चित्र पता नहीं है, हा? अपना एक्सरे पता नहीं है, उसने गहराई से अपने आप को देखा नहीं है। जो हमने छोड़ा है वो भी 100% नहीं छूटा है, है कि नहीं ऐसा? जो धारण किया है वो भी 100% नहीं। समझते हैं ना अपने आप को कि 100% है? है नहीं है ना? मीन्स पुरुषार्थ की मार्जिन है, आवश्यकता है। अपने आप को तो देखते हैं ना साइलेंस में बैठकर, यहां भी आकर बाबा के सामने अपने आप को देखा होगा ना। तो हमें अपना चित्र स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे अपने आप पर कहां मेहनत करनी। और ये भी समझ है हम सबको कि बन तो सकते हैं परफेक्ट, क्योंकि ब्रह्मा बाबा बने हैं, वो भी तो अधर कुमार ग्रस्ती थे ना, वो भी बने हैं, मम्मा भी बनी है, दोनों एग्जाम्पल हैं। बाबा बूढ़े थे, मम्मा जवान थी। बाबा गृहस्थी, मम्मा कुमारी। बाबा तो शाहूकार थे, मम्मा साधारण गरीब परिवार की थी। माना दोनों एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। बूढ़े जवान, कुमार कुमारियां, धर कुमार माताएं, गरीब शाहूकार पढ़े अनपढ़ हम कोई भी कोई बहाना तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाबा और मम्मा हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो समय भी बनने का है, संगम का समय, चढ़ती कला का समय है। अपने आप को अभी ऊपर ले जाना सहज है क्योंकि समय ही चढ़ती कला का है। बाबा हमें संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, हमें खुद से बार बार ये पूछने की आवश्यकता है, साइलेंस में बैठकर, एकांत में बैठकर अपने आप से पक्का कराना है कि सचमुच मुझे बाबा जैसा बनना है ना। खुद अपने आप से पूछो, आज भी बाबा ने कहा ना पूरा वर्षा लो, बाबा हमें ऊंच देखना चाहते हैं। तो अपने आप से हमें पूछना है कि क्या विचार है, थोड़ा बहुत बाबा से प्राप्त करना है या पूरी प्राप्ति करनी है। अपने आप से पूछना है। बाबा कहते हैं, दादियां कहती है, ऐसे नहीं है। हम क्या कहते हैं, हमारा अपना क्या कहना है। बनेगा वो ही ना जो खुद ठानेगा, जो खुद फैसला करेगा वही बन सकेगा ना। बनाने वाला तो हाजिर है। तो पूछो लक्ष्य क्या है, इतने में राजी हैं कि हम ज्ञानी बन गए, पवित्र बन गए, योगी बन गए, सेवाधारी बन गए, सहयोगी बन गए, ओवरऑल हमारा जीवन तो अच्छा ही बन गया है ना। हम तो सेवा करते हैं, परोपकारी हैं, कंपैरेटिवली हम तो अच्छे ही बन गए हैं ना। तो इतना ही ठीक है या और भी कुछ पुरुषार्थ करना है। इतने में ही राजी हैं कि हमें और पुरुषार्थ करना है और परफेक्शन लाने। पूछो, इतने में भी तो बहुत मजा है ना। हाँ, इतना नहीं चलेगा, और चाहिए। क्योंकि लक्ष्य पर बहुत डिपेंड करता है, मेरा अपना क्या विचार है। खुद खुद से फैसला करेंगे ना, ताकि हम मुकर न जाए। हम घड़ी घड़ी बदल जाते हैं, बातें आती हैं कमजोर हो जाते हैं, कारण मिलता है कमजोर हो जाते हैं, परिस्थितियां आती हैं ढीले हो जाते हैं, घड़ी घड़ी हम अपनी बात से मुकर जाते। इसलिए मधुबन में आए हो ना, तो अपने आप को पक्का करा लेना है कि सचमुच दम लगा के पुरुषार्थ करना है ना। ऐसे तो नहीं कहते हैं कि भाई जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। एक होता है ना भाई पूरा दम लगा के करना। बाबा कहते हैं ना 200 नाखूनों का जोर लगा के। तो क्या विचार है सबका? पूरी ताकत से करना है ना पुरुषार्थ। आवाज नहीं आया? भोग तो खाया है ना, फिर और ब्रह्मा भोजन मिलने वाला है। फिर रोज ये रिवाइज करना है। तप किसको कहते हैं? पूरी दृढ़ता से समझ पूर्वक अथक पुरुषार्थ करना, उसको तप कहते हैं। एक ऊंचे संकल्प के साथ पूरी ताकत से लग जाना, उसे तप कहते हैं। इसलिए रोज खुद ही खुद से रिवाइज कर। भल ग्रस्त में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, पर हम है तो योगी आत्माएं। बाबा तो कहते हैं ना बेहद के सन्यासी, बेहद के वैरागी, महातपस्वी, राज ऋषि। भल अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं लौकिक का भी, पर अब हम ग्रस्ती नहीं हैं, ट्रस्टी है। ये तो चेंज हो गया ना, कि जहां कहीं भी हम हैं हम ट्रस्टी, ग्रस्ती नहीं है। तो खुद से ये दृढ़ फैसला, लक्ष्य, और रोज अपने आप को पक्का कराना है कि ऐसे ही नहीं चलना है। हाँ हाँ हम ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं। और बाबा कहते हैं ना कि देखो कैसे चल रहे हो, किस गति से चल रहे हो, बरोबर लक्ष्य की ओर चल रहे हो। ये अटेंशन खुद को ही रखना होता है। अक्सर कई बार भाई बहने दादियों से बड़ों से पूछते हैं ना कि दादी अभी आपका क्या पुरुषार्थ चल रहा है, दादी आपने क्या किया जो आप दादी बने। ऐसे हम पूछते रहते हैं, बड़ों से पूछते हैं कि अभी अभी समाप्ति वर्ष में आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब हमें दूसरों से पूछना है या खुद से पूछना है, बताइए। क्योंकि मैं कैसे संपूर्ण बनूंगी ये तो मुझे सोचना है ना। आज दादी से हम पूछेंगे तो दादी तो अपने हिसाब से बताएगी। जो भी हमारे बड़े हैं वो तो अपनी स्टेज अपने हिसाब से बताएंगे ना, पर मेरे हिसाब से मुझे क्या करना है। तो ये कोई दूसरों से पूछने की बातें नहीं है, खुद खुद से पूछने की बात है। कि मुझे अपने आप को बनाना है संपूर्ण बाप समान, तो मुझे क्या करने की आवश्यकता है। कहां मुझे फोकस करने की जरूरत है। फाइनल एग्जाम के टाइम पूरा कोर्स रिवाइज करते हैं हर सब्जेक्ट का, पर जिसमें कमजोर है हर कोई अपने हिसाब से वहां ज्यादा फोकस करेगा। मैं कहीं और कमजोर हूं, आप कहीं और है, तो हर एक को खुद अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या करना है। बनना है तो बाबा कहते हैं ना, रास्ते हैं, मदद भी है, पर वो लगन कि सचमुच हम धुन लग जाए। आज भी था ना वरदान में, तात और बात एक ही हो, बाबा जैसा बनना है, बाबा जैसा बनना है। भक्ति में भी वैल्यू किसकी है, अव्यभिचारी भक्तों की। अनन्य भाव से भक्ति करने वालों की, पूर्ण समर्पण में इत्ता की वैल्यू है। आज की दुनिया को ही देख लीजिए, हर बात में स्पेशलाइजेशन की वैल्यू है। सामान्य की तो अब कोई वैल्यू ही नहीं है ना। भैया आप MBBS हुए कोई बड़ी बात नहीं, स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टाइजेशन चाहिए, है ना। क्योंकि हर प्रोफेशन में कितना डेप्थ कितना विस्तार हो गया है। तो हमारा भी क्या है, आध्यात्मिक पुरुषार्थियों में सबसे ज्यादा ज्ञान तो हम बच्चों के पास है ना, दुनिया के पास कहाँ है। तो कॉमन बनना है या स्पेशल बनना है। ये खुद को निर्णय करना है, और फिर बनना है तो लगना पड़ता है ना, लगन चाहिए। टाइम की बात नहीं है, टाइम की बात नहीं है। कई सोचते हैं इससे ज्यादा टाइम हम दे नहीं सकते हैं, टाइम की बात नहीं है। टाइम तो बाबा के बच्चों का जो भी टाइम बचता है वो बाबा के लिए ही है ना, और कुछ हमारा और तो कोई है ही नहीं फील्ड है ना, और कहीं हम अपना टाइम देंगे नहीं। दुनिया में हमें कोई रस है नहीं, है ना, हमारे पास टाइम है तो घूम फिर के बाबा सेवा यज्ञ सेंटर वही है ना मधुबन, बस हमारा तन मन धन मन वचन कर्म कहीं और तो लगाना ही नहीं है ना हमें, जो जरूरी है वो दुनिया में आप लगा रहे हैं, बाकी हम है ही पुरुषार्थ और सेवा के लिए, तो टाइम की बात नहीं है, अब बात है लगन की, धुन की, अब बात है पूरा केंद्रित होने की। मार्गदर्शन तो बाबा ने दे ही दिया है ना, ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है, बाबा ने पूरा हमें बता दिया है। बात है मेरी बस, मुझे बनना है, इसलिए रोज बाबा कहते हैं ना रिवाइज करो, क्या लक्ष्य है, क्या हमारा बाबा से प्रॉमिस है, कितनी बार हमने भगवान के सामने पूरे ब्राह्मण परिवार की साक्षी में कितनी बार हाथ उठाया है, बाबा ने जब जब पूछा है, बाबा ने कहा था ना लास्ट के एक दो साल पहले कि ये दृश्य याद रखना, बाबा ने कहा था ना, हमने अपने उमंग उत्साह से ही हाथ ऊपर उठाया ना, तो जब कभी भी थोड़ा भी कमजोरी आती है, मन बिखरता है, भटकता है, रुचि कम होती है, तकलीफ लगती है, तो याद करो हमने भगवान से क्या प्रॉमिस किया है, हमने कितनी बार अपना हाथ ऊपर करके बाबा को साथ दिया है, हम ऐसे ही थोड़ी कह रहे हैं बाबा को हाँ बाबा बन जाएंगे बन जाएंगे, धोखा तो नहीं दे रहे हैं ना हम बाबा को, पूछ रहे हैं भाई, आपका धोखा देना तो डायरेक्ट भगवान से हो जाएगा, इंसानों के साथ तो बहुत बार करते हैं हाँ आपका काम कर देंगे फिर बदल जाते भूल गए और काम में चले गए, बाबा को तो धोखे में नहीं रखना है ना, बाबा हम ब्राह्मणों की मदद से गोवर्धन पर्वत उठा रहा है, नई दुनिया बना रहा है, तो ये सब बातें रोज पक्की करना है, तो आपकी तपस्या नेचुरल चलेगी। क्या तपस्या करनी है, तपस्या भट्टी में आए हैं क्या तपस्या करती, सबसे पहली तपस्या है देहभान से न्यारा रहना, आत्माभिमानी बनना, ये सबसे बड़ी मूल तपस्या है। क्योंकि आत्मा भोगी बनी ही देह अभिमान के कारण। आत्मा ने अपनी सत्यता पवित्रता गंवाई ही देह अभिमान के कारण। इसलिए देह भान से न्यारा, बाबा भी कहते ना अशरीरी होकर बैठो, अशरीरी होकर याद करो, साक्षी न्यारापन। जितनी बातों में जाते हैं उतनी मनोस्थिति बदलती रहती। आप देख लो, जितनी बातों में आप इन्वॉल्व होते हैं उतनी स्थिति पर प्रभाव आता है। हाँ भाई, जहां आप जिम्मेवार हैं वहां आप माथा मारो, गहराई में जाओ, विस्तार में जाओ जितना जरूरी है। बाकी बातों में डिटैच रहो। अपने आप में रहो, अपनी स्थिति में रहो। क्योंकि जितने व्यक्ति परिस्थिति या साधन और कर्म, व्यक्ति परिस्थिति साधन और कर्म जिसके भी प्रभाव में आएंगे झुकाव बढ़ेगा। पहले प्रभाव पड़ता है, फिर झुकाव बढ़ता है। तो हम अपनी स्वस्थिति गंवा देते हैं ना। आप प्रभाव और झुकाव में गए, माना आप स्वस्थिति गई आपकी। इसलिए बाबा कहते हैं शुरू से, न किसी के अवगुणों से घृणा करनी है, न किसी के गुणों पर आसक्त बनना है। आज भी बाबा ने कहा, देखो ब्रह्मा बाबा भी अल्टीमेट शिव बाबा पर हमें डिपेंड करते हैं, बाबा सुनाते हैं। हम क्या करते हैं, ये अच्छा क्लास कराते करके व्यक्ति पर ही अभी तक तो फिदा हो रहे हैं। तो भगवान रोज क्या कराता है, वो अच्छा नहीं कराता है। जो कुछ सुना रहे हैं वो तो बाबा का ही सुना रहे हैं ना, पर अभी भी हमारे में परिवर्तन नहीं है, हम व्यक्तियों के पीछे ही भाग रहे हैं। ठीक है, उनसे सुन के समझ के अपने आप को और बाबा के नजदीक लाना है ना। और अब पर्टिकुलर अभी जो समय है, जब भगवान भी पूरा बरस चुका है हमारे पर, है ना, उसने अपना सब कुछ हम पर वारी कर दिया। और देखो अपना पार्ट बाबा ने साइलेंट कर लिया। अभी बाबा तो साक्षी हो गया है ना, कहां बाबा आ रहा है। समाप्ति वर्ष कह के सबसे पहले तो बाबा ने अपना ही पार्ट समाप्त कर दिया। तो अब सोचने का टाइम आ गया ना कि अब मुझे क्या करना है। अब मुझे अपनी लगन बाबा से बढ़ानी है। ये महसूस कि आज भी कहा ना, बाबा की कमाल है, बाबा की महिमा है। बेशक जो बने हैं उसकी महिमा हम करेंगे, कोई मना नहीं है। प्रशंसा तो करनी है ना, और सीखना भी है। पर मुझे मेरी लगन तो बाबा से बढ़े ना। तो दिन प्रतिदिन हम ज्यादा योगी बनते जाने चाहिए, तपस्वी बनते जाने चाहिए ना। क्योंकि जितनी अच्छाइयां सेवा में, चिंतन में, क्लास में, जिसमें भी हम देख रहे हैं, सेंटरों में, साधनों में, बाबा की सेवा के, ये देख देख के हमारी कुर्बानी तो किस पर बढ़नी चाहिए? बाबा पर बढ़नी चाहिए। व्यक्ति पर की आधारिता खत्म होनी चाहिए और बाबा पर कुर्बान हम होने चाहिए। इसलिए स्व में स्थित रहना हर हाल में, यही हमें खास अटेंशन रखना है। वही तो तप है हमारा। फिर अपने आप को अटेंशन में लाओ। हर क्षण देह द्वारा कर्म करना है और हर क्षण मुझे न्यारा रहना है। इसलिए देही अभिमानी बनना और उसी में आगे अशरीरीपन का अनुभव करना, अव्यक्त माना, अपने आप को आकारी अनुभव करना, ये हमें खुद के प्रति ध्यान देना है। आज भक्तों ने भी हठ दमन की भी मेहनत की ना, इंद्रिय रसों पर विजयी बन जाएं, रस और स्वाद खींचे नहीं। देहभान में आने से ही अपने आप को भूलते हैं, बाबा को भूलते हैं, माना हम डिस्कनेक्ट होते हैं। इसलिए निरंतर आत्माभिमानी बनने का है ना, एक इंटेंशन से पुरुषार्थ हमें करना है। तो विशेष हम भट्टी में बैठते हैं सभी बातों से फारिग होकर, वो इसलिए ही बैठते हैं ना कि हम ये प्रैक्टिस करें, महसूस करें। और एक बहुत अच्छी बात अटेंशन में भी आई बाबा से कि चलो दिन भर हम इस प्रकार का पुरुषार्थ करें, पर बाबा कहते हैं अमृत वेला जितना शक्तिशाली समय है तो उस समय तुम्हारी स्थिति भी इतनी शक्तिशाली चाहिए। साधारण याद या रूरिहान या मंथन की याद नहीं, बाबा ने कहा उस समय तुम्हारी शक्तिशाली पूरी एकाग्रता की पावरफुल स्टेज हो, वो समय है बाप समान बैठना तपस्या में। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अमृत वेला का समय शक्तिशाली है तो उस समय हमारी योग की स्थिति भी शक्तिशाली चाहिए। फिर एक बाबा सचमुच देखो दूसरा तो कोई नहीं है ना। बहुत सूक्ष्म में हम कोई ना कोई आत्मा पर आधारित हो जाते हैं। एक बाबा किस और भी कुछ है देखो, कोई व्यक्ति से संबंध से धन से कोई आदत से धंधे से पोजीशन से सचमुच देखना पड़ेगा ना कि और तो कोई नहीं है ना। एक बाबा माना सचमुच एक व्रता बाबा व्रता बेशक निश्चय हम सबको है, लगन भी बाबा से है, पर समय अनुसार बाबा कहता है ना कि लगन में मगन, लगन में मगन, जहां लगन लगी है उसी में मगन। हमारी लगन बाबा से लगी है पर फिर बुद्धि बाहर निकाल कर चारों ओर देखते रहते, फिर वापस बाबा में लगाते। कि सभी योग कर रहे हैं ना, सभी योग कर रहे हैं ना, तो समझते हैं कि मैं भी योग करूं। जब समझते हैं कि नहीं और तो अभी भी और प्राप्तियों में बातों में लगे तो हम सोचते हैं हम रह जाएंगे करके हम भी उधर ही चल पड़ते। आप देखो बहुत ये बातें हैं हम सब में, जबकि भक्ति में देखो सन्यासियों में देखो वो तो अकेले अकेले निकल पड़े थे। हमें तो इतना संगठन की मदद मिली है, मान लो आप 200 आए हैं और 100 इधर उधर कहीं जाएं तो जो 100 बैठेंगे उसका भी योग नहीं लगेगा, कहाँ गए ये सब कहाँ गए। होता है ना, माना कितना अभी भी जहाँ लगन लगी है वो बात हम बच्चों ने परख ली है कि अब लगन तो बाबस औरों में नहीं पर मगन नहीं है हम, तप माना मगन हो जाए। अभी भी हम समझते हैं ना कि सब योग करे तो हम योग करें, वरना और सब और बात में लगे तो हम रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा हमें लगता है। लव है बाबा से, पर बाबा तो कहते हैं लवलीन। योग बाबा से लग चुका है, ऐसे नहीं है कि भाई योग के समय आप एकाग्र नहीं हो पाए तो आपका योग नहीं है, ऐसा नहीं। आपका योग तो अब बाबा से लग चुका है, अब आप भटक नहीं रहे, अब और कोई से बुद्धि नहीं है, पर एकाग्रता, एकाग्रता से ही लाइट माइट आएगी। बिना एकाग्रता लाइट माइट नहीं आती है ना, फोकस होना पड़ता है। तो एकाग्रता, एटलीस्ट जब हम अभ्यास करने बैठते हैं उस समय और आकर्षण नहीं होने चाहिए। अच्छा, कर्म में भी हो तो भी बाबा कहते कम कारड़े दिल यारड़े, है ना। कर्म में खोने की तो बात ही नहीं है ना, कर्मा भी चलो करना है, क्योंकि चैतन्य आत्मा 24 घंटा बैठ तो नहीं सकती है, 4 घंटा भी नहीं बैठ पाते हैं। तो प्रवृत्ति तो चलेगी, पर प्रवृत्ति करते भी मेरी इंटरनल लगन कहाँ है। और आत्मा को इस बात का अनुभव है, ये गुण आप में है, ये शक्ति आप में है। हमने देहधारियों की लगन में ये किया है सब। इस जन्म में नहीं किया, कोई जन्म में तो कहीं ना कहीं हम आशिक हुए हैं देहधारियों में। और हर बात में माशुक ही उनके लिए मुख्य होता है। तो इस जन्म में भगवान के साथ हमारा संबंध बना है, प्यार बना है, तो वो आशिकी बाबा से, क्योंकि एकाग्र तो हम इसी से हो सकेंगे ना। मन बुद्धि एकाग्र करने का और कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है, प्यार, समझ और प्यार। इससे ही मन लगन में मगन हो सकता है। समझ, कहां मन लगाने में कल्याण है, क्यों बाबा में मन लगाना, वो समझ है, जानते हैं, उनसे ही प्राप्ति है, कल्याण है। प्यार, प्रैक्टिकल लाइफ में, कर्म में ट्रस्टी, प्रैक्टिकल ट्रस्टी बन के रहना, माना मालिक के आज्ञानुसार सब कुछ करना। अब श्रीमत तो हरेक को पता है, रोज मुरली में हर बात की श्रीमत मिलती है ना। प्रैक्टिकल में मन वचन कर्म तन मन धन से इस जीवन का कारोबार, लौकिक में या अलौकिक में, ट्रस्टी बनकर। हमारा योग प्रवृत्ति मार्ग का है, छोड़ना नहीं है, पार्ट तो प्ले करना है, तो ट्रस्टी बनकर करना है। और तभी हम हल्के रहेंगे, इजी, सहज रहेंगे। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं करेंगे, ट्रस्टी बन के हम नहीं चलेंगे लौकिक अलौकिक दोनों में, तो हम योगी कैसे बनेंगे? फिर भल हम शरीर से इस दुनिया में हैं, पर सदैव ऊपर रहना, वतन में रहना, चाहे असली घर में रहो चाहे सूक्ष्म वतन में रहो, पर सदा मन बुद्धि से ऊपर रहना, ये भी एक तपस्या है कि मुझे इस दुनिया की स्थूल हल्की साधारण नीची बातों में नहीं जाना है। ऊपर रहना माना हमेशा बाबा ऊंचे संकल्पों में और उस इस दुनिया से न्यारी स्थिति में हमें रखना चाहता है। योग कहते ही उसको है ना कि इस दुनिया में मन बुद्धि ना भटके और असली घर में असली बाबा में लगी रहे। फिर कर्मेंद्रियों से कोई भी नियम मर्यादा के विपरीत कर्म ना हो, ये कंट्रोल, इसको तप कहते हैं। तप से वो संयम आता है। कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए जो अथक मेहनत करते हैं उनको तप कहते हैं ना, भी मैंने बहुत तप करके ये पाया है, ऐसे कहते हैं। तो वो संयम हमें पाना है ना, सेल्फ कंट्रोलिंग पावर, स्वराज्य अधिकारी बाबा कहते, तो वो पाने के लिए डिटैच रहना, ऊपर रहना, श्रीमत में पार्ट प्ले करना, तभी तो वो संयम आएगा कि इन कर्मेंद्रियों से कोई पाप ना हो। आता है ना साकार मुरली में कि मनसा में कितने भी तूफान आए पर कुछ भी हो कर्म में नहीं आना चाहिए। और अब समय अनुसार तो बाबा कहता है मन में भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। पर वो तो तब बनेगा ना जब कर्म में विजयी बनेगी। मान लो अभी भी हमारी वाणी बिगड़ जाती है तो कर्म में तो आ गया ना, वो तो कर्म में आ गया, हमने किसी पर हाथ उठा लिया, कोई धन साधन ने प्रभावित कर लिया और हमने उस हिसाब में गड़बड़ कर ली, सेवा में भी नाम मन शान की बात आ गई। माना कर्म में नहीं आना चाहिए ना। अब इतना तो मेरा विजयी पना हो कि मेरी दृष्टि से, चेहरे से, वाणी से, कर्म से कोई भी मायावी रिएक्शन ना हो। क्यों बाबा वो पांच स्वरूप कहता है? ड्रामा में तो बहुत स्वरूप हमारे बने हैं, रोज के कितने स्वरूप बनते हैं और बिगड़ते हैं। पर पांच स्वरूप का अभ्यास माना बाबा हमें सदा श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहते हैं। कि हमें सदा वो श्रेष्ठ स्थिति में और उसके आधार पर वो श्रेष्ठ स्वरूप दिखाना है, तो ये भी एक तप है। इतना मुझे हूं कि मेरा इसमें जरा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और वहां तप ही मदद करता है, क्योंकि डिटैच रहेंगे तो ही रिएक्शन आपके कम आएंगे। जितना बातों में प्रभाव में गए माना रिएक्शन आएगा। न्यारापन, और लास्ट की प्रैक्टिकली भी हम बाबा से जुड़े हैं, इतने बड़े यज्ञ से जुड़े हैं, तो जो हमारे यज्ञ की आचार संहिता है, जो हमारे नियम मर्यादा दिनचर्या धारणाएं हैं, उस अनुसार ही मुझे सब कारोबार करना है, इससे विपरीत नहीं। माना मुझे सही तरीके से सही प्राप्तियां करनी, गलत तरीके से सही प्राप्तियां नहीं करनी है। मान लो मुझे कोई सेवा का चांस चाहिए, वो प्राप्ति तो करनी है ना, पर सही तरीके से, मुझे योग्य इतना बनना है कि वो चीज मिले। दूसरे की ग्लानी कर वो चांस लेना माना वो गलत तरीके से सही चीज ली मैंने, पर तरीका तो गलत हुआ ना। तो हम सबका बाबा से, यज्ञ से प्रैक्टिकली एक कमिटमेंट कि यज्ञ की आचार संहिता अनुसार ही मुझे सब कारोबार करना है, चलना है, जीना है। ये भी प्रैक्टिकल दृढ़ता, वो भी एक इसी को ही तो तप कहते हैं, दृढ़ संकल्प से उस अनुशासन को फॉलो करते रहना। मन वचन कर्म में चलितता ना आवे, वो ही तो तप है। और तभी अपने आप फीलिंग आती है कि हम बाबा जैसे बनते जा रहे हैं, हम बन सकते हैं। ये खुद में हिम्मत आई। ओम शांति। तीन मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। बाबा के साथ बात करते हुए अंडरलाइन करेंगे कि प्रैक्टिकली मुझे क्या करना है, बाबा जैसा बनने के लिए किन किन बातों में दृढ़ता अपनानी है। स्वयं में मस्त रहना है, निज स्वरूप के आनंद में रहना है, बाबा मेरा मैं बाबा की, स्वयं के पार्ट में ट्रस्ट, अन्य सर्व से साक्षी और सर्व के लिए शुभ भावना, योग का सहयोग, मन की आंख से असली घर को देखना, बाप दादा ब्राह्मण कुल यज्ञ का नाम रोशन करना,
बहुत सुंदर सुंदर संकल्पों से अपनी स्थिति को परिपक्व किया है। परम आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत दिल की दुआओं भरा धन्यवाद है।